धवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उहि समुत्तिर्णये जिनेणमिं वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का ये चौथा खंड, इसका नाम है वेदना और उसमें अनुयोग द्वार का नाम भी वेदना ही है। और इस 10वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 पर हम आगे 62 देखो 61 पेज में लास्ट में क्या पढ़ा था वहां से शुरू करते हैं। यहाँ जो जीव यव मध्य स्थान को यहाँ बता रहे, पहले हमने काल यव मध्य स्थान क्या होते है उसको देखा था, यानी वो यवाकार वगैरह उसकी रचना देखी थी। अब यहाँ जीव यव मध्य क्या होता है, जीव यवाकार रचना क्या होती है उसको समझाते हैं। यव का जो आकार होता है बीच में मोटा और दोनों ओर टेपरिंग है, ऐसे यहाँ पहले एक पंक्ति में जघन्य से उत्कृष्ट तक योग स्थान लिखना, थोड़े अधिक थोड़े अधिक थोड़े अधिक, कहाँ से कहाँ तक, ये सारे परिणाम योग है। द्विंद्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों के उत्कृष्ट तक, जघन्य से उत्कृष्ट तक, ये सारे ही पंक्ति एक पंक्ति में वर्टिकली लिखेंगे हम। अब उसके बाजू में क्या लिखेंगे इसको हम स्थिति कहेंगे, और उसके हरेक के बाजू में क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर एक सिंगल सिंगल योग स्थान में जीव कितने हैं वो संख्या हम वहां लिखेंगे। तो सबसे पहले जघन्य स्थान में कितने जीव है, उसके ऊपर कितने जीव है, उसके ऊपर कितने जीव है, इस तरह से उसकी रचना होगी। तो जहां जीवों की संख्या मैक्सिमम है थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाते हैं, और फिर विशिष्ट योग स्थान के बाद फिर घटती जाती है जीवों की संख्या। तो जहां मैक्सिमम संख्या है उसको योग यव मध्य कहेंगे। हमने जो संख्या मान ली है तो उसमें 128 की संख्या है जहां मैक्सिमम जीव है, जिस पर्टिकुलर एक सिंगल योग स्थान में मैक्सिमम जीव है उस वो जीवों का प्रमाण है वहां पर 128। अब उसके नीचे की ओर भी घटते चले जाएंगे, प्रति एक एक योग स्थान, उसको प्रति निषेक भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो वर्टिकल लाइन हमने देखी थी उसको एक एक योग स्थान को एक एक निषेक कहने की पद्धति है। स्थिति भी कहेंगे, निषेक भी कहेंगे, यानी वो स्थिति से कुछ मतलब नहीं, कर्मों से कुछ मतलब नहीं है, हम योग स्थान कहेंगे। तो प्रत्येक योग स्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं उसकी यहाँ चर्चा है। तो 128 से लेकर नीचे थोड़ा घटेगा थोड़ा घटेगा थोड़ा घटेगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर घटते घटते आधा हो जाएगा, फिर घटते घटते आधा हो जाएगा। यहाँ तो इन्होंने 3 गुनहानियां नीचे मानी है और ऊपर की ओर 5 गुनहानियां, यानी 128 से घटते घटते कम हो जाएगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरह से। तो इसको कहेंगे योग यव मध्य, जीव संबंधी जीव योग यव मध्य कहेंगे, या जीव यव मध्य भी कहते हैं। अब उसमें जो है 61 पेज से बात शुरू हुई थी कि उसमें 6 अनुयोग द्वारों के द्वारा ये बता रहे कि प्ररूपणा यानी जघन्य से उत्कृष्ट तक एक एक स्थान उसमें जीव होते हैं होते हैं होते है, बस इतना ही, ये प्ररूपणा हो गई। प्रमाण में प्रत्येक स्थान में कितने जीव है ऐसा यहाँ बताया गया था, तो एक एक स्थान में कितने जीव होती है, तो असंख्यात जगत श्रेणियां, ये कल बताया था। एक एक स्थान में अगर असंख्यात जगत श्रेणियां प्रमाण जीव होते हैं, यहाँ योग स्थान एक है और पर्टिकुलर योग स्थान में जीव असंख्य जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात इतने हैं, एक एक में, फिर भी उसका प्रमाण हीना दिखे। थोड़ा बढ़ते 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 उत्कृष्ट तक पहुंचेगा, फिर बढ़ते। प्रत्येक योग स्थान में सामान्य कथन क्या है, कितने जीव है, असंख्यात जगत श्रेणियां इतना, असंख्यात जगत श्रेणी, एक एक योग स्थान में जगत श्रेणी से असंख्यात गुना इतने जीव पाए जाते हैं। ये तो हो गया प्रमाण उसका। अब उसमें श्रेणी यानी प्रति योग स्थान कितने की बढ़ोतरी है, कितने की घटौती है, उसको कहेंगे श्रेणी। श्रेणी ने एक एक पंक्ति में उसका अलग अलग कथन होगा। थोड़ा 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 बढ़ेगा या फिर हम एकदम जंप टू जंप करेंगे तो दो गुना हुआ, तीन गुना हुआ, सॉरी दो गुना हुआ, चार गुना हुआ, इस तरह से नीचे से ऊपर बढ़ते चला जाएगा, फिर ऊपर घटते चला जाएगा, उसको कहेंगे श्रेणी। तो देखो अभी यहाँ 61 पेज पर आवाज का है, 61 पेज पर ये वहां असंख्या जगत श्रेणिया इतनी जीव क्यों होते हैं उसके लिए उन्होंने प्रश्न पूछा था, और उसका उत्तर देते समय हमने बीच में ही कर्मकांड पढ़ना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देखो नीचे, देखो ये शंका यहाँ पूछी है नीचे 61 पेज पर, जघन्य योग स्थान में सबसे जो जघन्य, जो द्विन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य योग स्थान है, ये सारे परिणाम योग स्थान है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? हरेक स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा जघन्य स्थान में इतने होते हैं कैसे जाना, उसके लिए कह रहे हैं, उसका उत्तर कहते हैं, प्रतरांगुल के संख्यातवे भाग का जगत प्रतर में भाग देने पर सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है। यानी सारे त्रस पर्याप्त जीव कितने हैं, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात, इतने जीव होते उसको कैसे लिखते मालूम है, उसकी संदृष्टि जिसको कहेंगे, जगत प्रतर यानी दो आड़ी लाइन, देखो एक आड़ी लाइन इसको जगत श्रेणी कहते हैं, दो आड़ी लाइन ये जगत प्रतर हुआ, तीन आड़ी लाइन ये लोक हुआ, ये उसकी संदृष्टि है। अभी ये जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल, अंगुल के लिए दो, प्रतरांगुल के लिए चार, उसकी संदृष्टि है, और ये संख्यात की साइन है, इसका अर्थ ये त्रस पर्याप्त जीवों की संख्या कितनी है, जगत प्रतर को प्रतरांगुल के संख्यात पे भाग दे इतनी है, त्रस पर्याप्त की, अकेले दो इंद्री के नहीं, त्रस पर्याप्तों की। जगत प्रतर एक असंख्यात है और प्रतरांगुल भी दूसरा असंख्यात है।
अच्छा, प्रतरांगुल के संख्यात में भाग से
जगत प्रतर को भाग देना,
प्रतरांगुल का संख्यात इक्वल टू प्रतरांगुल
कुछ भी हो ना वो भी असंख्यात ही हो, कैसे संख्यात प्रतरांगुल असंख्यात है ना, प्रतरांगुल इटसेल्फ असंख्यात है, तो प्रतरांगुल कैसे होता है, अंगुल गुणा अंगुल, अभी प्रतरांगुल का अंगुल, प्रतरांगुल का अंगुल से भाग देंगे तो भी अंगुल आता है, वो भी असंख्यात है। अब हमने प्रतरांगुल को केवल संख्यात से भाग लिया तो कितना बड़ा असंख्यात होगा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं 61 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, प्रतरांगुल के संख्यात वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने पर सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है, क्योंकि वही तो हमको देखना है टोटल जीव कितने हैं। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के, समस्त योग अध्वान स्थान यानी जिसको हमने स्थिति कहा था, जिसको हमने 32 मान लिया था, असंख्यात वे भाग प्रमाण तीन जीव गुणहानियों के, समस्त योग स्थान कितने हमने देखे 32, वहां हमने कर्मकांड में संदृष्टि देखी थी उसकी अपेक्षा मैं बता रही हूं, बाद में फिर जाके कर्मकांड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके बिना एक विषय ऐसा है वो समझ में आने से रहा फिर। तो उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण तीन जीव गुणहानिया। देखो गुणहानिया किसको कहा, प्रत्येक योगस्थान के प्रति जीवों की संख्या घटते 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 जहाँ आधी हो जाती उसका प्रमाण एक गुणहानि है। यहाँ एक गुणहानि का प्रमाण चार है यहाँ योगस्थानों में, उसका चार प्रमाण है तो तीन गुणहानि का प्रमाण 12 होगा। यहाँ तक बात ख्याल में आई। वो तीन जीव गुणहानियों के 62 पेज पर आना, काल का भान, तीन गुणहानियों के काल का, काल का भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण एवं मध्य के जीव आते हैं। यानी जिसको हमने 128 माने थे, यव मध्य में जीव कितने माने थे, 128, क्योंकि सब जीवों को, सब जीव हमने माने थे 1422, यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर तीन गुणहानियों का जितना काल है उतने यव मध्य प्राप्त होते हैं। हमने देखा ना कुछ कम 12 से भाग दिया था वगैरह वगैरह, यानी टोटल जीव उन्होंने सभी 32 स्थानों में मिलकर 1422 टोटल जीव माने थे। अब उसको तीन गुणहानि और उसमें यव मध्य में 128 जीव थे ना, तो वो कैसा प्रमाण निकला, तो तीन गुणहानियों का जितना काल है उससे उसको भाग दिया था, यानी 12 से भाग दिया किसको, 1422 को, 12 × 12 कुछ कम से भाग दिया था, एग्जैक्टली इसका भाग नहीं जाएगा 12 से, कम संख्या आएगी। अब यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, ये संदृष्टि देखते आगे बढ़ेंगे। पिछली नाना गुणहानि, पिछली यानी नीचे की, 128 के नीचे तीन गुणहानियाँ और आगे वाली यानी ऊपर, ऊपर कितनी गुणहानियाँ, 5 है। तो पिछली नाना गुणहानि शलाका, शलाका उसके ने कितने नंबर ऑफ नाना गुणहानियाँ, 3 है, विरलन कर यानी 1 1 1 लिखना, द्विगुणित करने पर, विरलन करके द्विगुणित किया उसको, अन्योन्य अभ्यस्त राशि होती है, इससे तीन गुणहानियों को गुणित करने पर योगस्थान काल असंख्यात गुणा होकर भी जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग होता है, उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योगस्थान स्थित जीव आते हैं। अभी हम ये कैलकुलेशन छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बाद हम विशेषार्थ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगत प्रतर का भागहार जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग पाया जाता है। यानी वहां जो प्रतरांगुल का संख्यात वा भाग है उसी को जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग कहा है। इस प्रकार इस उपदेश से उत्कृष्ट योग स्थान के जीव भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते यह सिद्ध कर लेना चाहिए। क्या कहना, हमने क्या देखा था, जघन्य में कितने जीव है, असंख्यात जगत श्रेणी, कोई भी यव मध्य में असंख्यात जगत श्रेणी, सर्वोत्कृष्ट में असंख्यात, प्रत्येक एक एक स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव होते हैं, ये सिद्ध करना चाहिए, यहाँ बता दिया। अब यही समझाने के लिए विशेषार्थ पढ़ते अभी हम, यहाँ त्रस पर्याप्त संबंधी कुल योग स्थानों में अलग अलग और मिलकर कितने जीव है यह बतलाते हुए, मिलकर कितने है हमने देखा था जगत प्रतर का वो जो असंख्यात होगा, और एक एक में कितने हैं असंख्यात जगत श्रेणिया, यानी असंख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत, प्रत्येक स्थान की असंख्यात जगत श्रेणी मिला 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 दो तो टोटल कितनी हो जाएगी जगत प्रतर का असंख्या, वो असंख्यात भाव। यह बतलाते हुए विशेषांक की सेकंड लाइन, सर्वप्रथम जगन्य आदि प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या की सिद्धि की गई है और उस पर से त्रस पर्याप्त संबंधी सब योग स्थानों के जीवों की संख्या फलित की गई है। यानी जगन्य में भी असंख्या जगत श्रेणी है और ऊपर प्रत्येक स्थान में असंख्या जगत श्रेणी, ये कहना चाहते हैं। आवली के संख्यात्वे भाग का प्रत्रांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि होती है, ऐसा नियम है। फिर भी यह राशि जगत श्रेणियों की अपेक्षा कितनी जगत श्रेणी प्रमाण है यह देखना है। यानी जगत श्रेणियां कितना लेना, एक दो चार कितना लेना, ऐसा मोटा नियम है कि समस्त त्रस पर्याप्त राशि में तीन जीव गुणहानियों के आयाम का चाहिए, का लगा लो उसमें, आयाम नहीं आयाम का भाग देने पर यव मध्य के जीव आते हैं, जो वहां संदृष्टि बनाए कर्मकांड की ही यहाँ उद्धृत किया है विशेषार्थ। अब उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि का अर्थ होता है यथार्थ फिगर्स, और अंक संदृश्य ने काल्पनिक संख्या लेकर हमको वो मूल गणित समझना है, बस इतना ही। उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा तीन जीव गुणहानियों का काल 12 है, क्योंकि एक गुणहानि इज इक्वल टू 4, तो तीन का प्रमाण 12 और त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण 1422 है। अतः इस राशि में कुछ कम 12 का, ये कुछ कम 12 उन्होंने सॉल्व करके बताया है, 711/64 का भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण 128 होते हैं। यानी 11.764 अंश है वो, कुछ कम 12। जो अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, हमने देखा ना यव मध्य में भी असंख्यात जगत श्रेणी है, जगन्य में भी उतने, उत्कृष्ट में भी उतने उतने, परंतु उसका प्रमाण ही ना दिखे सर्वत्र। यहाँ यद्यपि मूल में तीन गुणहानियों के काल का भाग दिलाया गया है, पर वह स्थूल कथन है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग दिलाने पर ही यह संख्या प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। यहाँ काल की अपेक्षा, यानी वो तो अवहार काल कहने की पद्धति है, इसलिए उसको उसमें गिनते हैं। यानी वो आठ समय, चार समय, उस काल से कुछ लेना देना नहीं है, और न ही कितने कालों में क्या क्या होता है उसकी भी बात कुछ बात नहीं है। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार जबकि त्रस पर्याप्त राशि में, जो हमने 1422 अपनी ऊपर मानी है, कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण आता है, यानी जो कितना 128 आया जो अभी बताया, तो उस राशि को यव मध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर उस राशि को, यानी टोटल राशि जो जीवों की है, यव मध्य के प्रमाण से करना, यानी 128 का एक यूनिट बना के उससे वो कितने होता है उसे देखेंगे, तो 1422/128 वही तीन गुणहानि आने वाला है। तीन गुणहानि के भाग देने पर 128 आया, 128 से भाग देने पर तीन गुणहानि आएगी, ऐसा यहाँ समझना ये हो गया। तो यव मध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर वह कुछ कम तीन गुणहानियों की जितनी संख्या होगी उतने यव मध्य प्रमाण प्राप्त होगी। आप ही बोलो,
यहाँ पे जीव
जीवों की संख्या की बात चल रही है ना। काल यव मध्य में 8 समय 7 समय कहते थे और वहाँ कोई गुणहानि वगैरह नहीं थी, वहाँ तो असंख्यात गुणा थे। सेंटर में जितना काल वाले योग स्थान थे वहाँ योग स्थान नंबर ऑफ योग स्थान लिए थे, यहाँ एक एक योग स्थान के प्रति जीवों की संख्या है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें हैं। एक एक सिंगल योग स्थान में जीव कितने हैं, तो असंख्या जगत श्रेणी इतने हैं, तो टोटल जो योग स्थानों में मिलकर जीव कितने हैं, तो जगत प्रतर का जो असंख्या तो भाग है पर्टिकुलर। तो हमने यहाँ पढ़ रहे थे उस राशि को यवमध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर मिला सबको, वह कुछ कम तीन गुणहानियों की जितनी संख्या होगी उतने यवमध्य प्रमाण प्राप्त होगी, प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जैसे हमने पहले 20 को 5 से भाग दिया तो 4 आ गए, तो 4 से भाग देंगे 20 को तो क्या आएगा, 5 आएगा। वही तो कहते हैं पहले वो यवमध्य के जीवों की संख्या कैसे निकाली, तीन गुणहानियों से भाग देकर निकाली। अब वो तीन गुणहानियों का भाग देगी तो यवमध्य के जीवों के प्रमाण से भाग देंगे तो तीन गुणहानियां उसकी संख्या आएगी। वही बात वो दोहराए। अब यह देखना है इस राशि में से जघन्य योग स्थान को प्राप्त कितने जीव है। 128 तो हमने वहां डिराइव किए थे, अब जघन्य योग स्थान में कितने हो गए। इसके लिए यह नियम है कि अधस्तन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से कुछ कम तीन गुणहानियों के काल को गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका समस्त त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर जघन्य योग स्थानों के जीवों का प्रमाण आता है। अभी वो कैसे निकाला, नीचे गुणहानियां कितनी, तीन है, तो नाना गुणहानियों का प्रमाण तीन है, तो तीन बार दो लिख के आपस में गुणा करो, उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि। तो दर्शन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 है, इससे कुछ कम तीन गुणहानियों के काल को गुणित करने पर, जो कुछ कम 12 था ना उसको गुणा करना है, वो कुछ कम का काल कितना है, तीन गुणहानियों का 11.764 अंश, जिसको ऊपर की थर्ड लाइन में 711/64 लिखा था वही ये संख्या है। यानी तीन गुणहानियां मल्टीप्लाइड बाय 8 करना है, गुणित करने पर अट्ठासी पूर्णांक 788 प्राप्त होते हैं। और इस सब इसका अभी जो प्राप्त हुआ है ना, इसका सब त्रस पर्याप्त राशि 1422 में भाग देने पर 16 प्राप्त होते हैं, जो सबसे जघन्य त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण है। देखो क्या किया उन्होंने, एक सौ अट्ठाईस के बाद वो कुछ कम होता गया ना नीचे, कुछ कम होते होते आधा हुआ, उसका आधा हुआ, उसका आधा हुआ, तो 8 बार आधा आधा हो गया। तो इसलिए वो तीन गुणहानियों को 8 से गुणा कर किया और जो आया उससे त्रस पर्याप्त राशि में भाग दिया तो यहाँ की संख्या मिलेगी डायरेक्ट 16।
तीन बार आधा हुआ, 4 बार
तीन बार हुए, ऊपर 5 बार हो गए। अब सबसे उत्कृष्ट त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण भी इसी प्रकार ले आना चाहिए। अतः यह राशि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। फिर से देखो अभी हम उदाहरणार्थ क्या लिखा, अधस्थन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि, ये समझ में आई अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं, वहाँ जो गुणहानि प्रमाण दो लिखकर आपस में गुणा करना उसको कहें अभ्यस्त, नहीं गुणा करना अन्योन्य आपस में, तो वो दो 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 को आपस में गुणा किया तो 8 आ गए। अब इस 8 से क्या किया, तीन गुणहानियों को अभी 12 समझो ना, वहाँ वैसे अगर हम लेते तो 96 आते हैं, परंतु कुछ कम कहने से उसकी संख्या 88.78 आ गई। अगर 12 लिखते तो 12 × 8 96 हो जाता ना, उसके बदले कुछ कम लिया इसलिए उसकी फिगर 88.7/7/8 वो आ गए। अब इसका क्या करना, अभी इसका टोटल राशि में भाग देना। देखो मैं अपनी भाषा में समझाने के प्रयास करती हूँ। बीच में प्रमाण कितना है, 128, एक बार गुणहानि हुई तो वहां का प्रमाण हमको निकालना है। तो ये 128 संख्या कैसे आई, 1428 को तीन गुणहानियां, तीन गु लिखेंगे हम, वो कुछ कम है, कुछ कम चौदह सौ बाईस सॉरी, तो 128 आए थे। अभी हमें पहली गुनहानी में कम होगा द्रव्य, तो या 100 यहाँ 128 से भाग दिया तो तीन गुनहानी आया। अब देखो यहाँ तीन गुनहानी आया और यहाँ 128। अभी वैसे नीचे की गुनहानी 164 तक पहुँचती है वैसे, अब यानी आधा हुआ उसका आधा हुआ। अब ये एक बार ही आधा करके देखेंगे, तो एक बार आधा करना है यहाँ पर, यानी एक से बदले हमको 64 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दो से गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ आधी आती है संख्या तो यहाँ दो बढ़ जाएंगे, यहाँ आधी के आधी चार चौथा भाग हो जाएगा, तो यहाँ चार गुणा, ये आठवां भाग हो जाता है तो आठ गुणा होगा। इसलिए तीन गुणानियों को आठ गुणा करके उससे भाग देंगे तो वहां की संख्या निकलेगी। हम ऐसा देखते हैं ना, 1422 को 128 से भाग दिया तो तीन गुणानी आया, अगर 64 से भाग देते तो तीन और दो
छह गुणानी
हो जाएगी, और अगर यहाँ 32 करते हैं तो इसको और चार हो जाएगी ना, चार से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 16 करेंगे तो यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा। अभी हमने यही किया, ये अन्यन्य अभिसरण 8 है, उससे तीन गुणानियों को गुणा किया और उसका भाग यहाँ दिया तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी। इक्वेशन तो वही है ना, जैसे मैंने बताया ना 20 को 5 से भाग दे तो 4 आया, तो 5 और 4 का आपस में उल्टा करो तो सेम इक्वेशन तो वही रहने वाला है। यहाँ ख्याल में आई बात, एक ही गुणहानि होती तो हम भागहार आधा होगा तो उसका रिजल्ट डबल आया, और वो रिजल्ट को भागहार में रखेंगे और वहाँ
भागहार आधा आधा करते जाएंगे तो वहाँ पे
डबल होगा ना, पर वो तीन गुणहानि जो डबल हुए उसका भाग देंगे तो हमें मूल संख्या मिलेगी वहाँ की। अब ऊपर की बात क्या हुई, ऊपर वो 128 के बाद वो गुणहानी कहाँ से शुरू होती है, 128 उससे वहाँ गुणहानी चालू हुई थी, वैसे थोड़ा डिफरेंस है उसमें। हाँ, फिर भी ये 64 होता है वगैरह, वो तो बात घटित हो जाती है। यानी कैसे निकला, अभी ऊपर की ओर क्या करना पड़ेगा, पांच बार आधा आधा हो गया तो पांच बार दो दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करना पड़ेगा, तो 32 आ जाएगा ना, तो तीन गुणानियों को उतने गुणा करके उसका भाग देंगे तो हमें वहां की संख्या मिलेगी ऊपर के लास्ट स्थान के उत्कृष्ट योग में जीवों की संख्या वहां निकलेगी। यहां तक बात ख्याल में आ रही है कुछ थोड़ा थोड़ा। अब इसी को कर्मकांड में से फिर दोबारा पढ़ लेते, देखो थोड़ा कल हमने पढ़ा था वहाँ 245-46 गाथा ये थी ना, पेज नंबर 246 से शुरू किया था हमने, वो गुणहानियाँ कैसी वहाँ बताई थी। अभी और उनकी टोटल कैसे निकालना वो छोड़ दो, ये 249 पेज निकालना 249, वह बीच में लिखा है यंत्र देखिए पृष्ठ 250। अब 250 देख लो पहले, अब वो 250 का यंत्र यहाँ समझाया है, फिर चलना 249 पर। कर्मकांड की बात कर रही हूँ मैं, 249 पेज पर ये लिखा है इस यंत्र का, यंत्र ने चार्ट, उसका भावार्थ इस प्रकार है, त्रस पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थान 32 कहे, इन द्विंद्रिय पर्याप्त के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट संगी पंचेंद्री के उत्कृष्ट तक टोटल नंबर ऑफ योग स्थान 32 है, यथार्थ में वो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। तो इनमें ऊपर की प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक रूप जो योग स्थान, उसके धारक 128 जीव है, इसको यवमध्य कहते। ऊपर के गुणहानि का ऊपर की पहली गुना है। देखो अभी टेबल में देख लो, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5वां कॉलम ऊपर से गिनते आए हैं, जहां 16 लिखा है वो ऊपर की पहली गुणहानि है और उसके नीचे नीचे की पहली गुणहानि है। ये गुणहानियां अलग अलग गिनना। तो ऊपर की पहली गुणहानि में यहाँ चय का प्रमाण 16 है, प्रति योग स्थान 4-4 जीवों की 4-4 जीव कम हो जाएंगे, यानी यहाँ लिखा है 128 फिर 112 सॉरी चय का प्रमाण 16 है, चार बात यहाँ नहीं लगानी है, चार उसका गुणहानि का प्रमाण है, चार में जाकर वो आधा होता है वो गुणहानि का प्रमाण है और ये जो 16 है वो चय का प्रमाण है। तो 128 में से 16 कम हो गए, फिर 16 फिर 16 तो 128 से लेकर 80 तक ये पहली गुणहानि है, उसमें से 16 कम करने पर 64 है वो दूसरे गुणहानि का, वो पहला निश्चय यानी पहला योग स्थान कहलाएगा। इस तरह से ऊपर तक है। अंतिम गुणहानि के जो अंतिम योग स्थान है सर्वोत्कृष्ट, वहां जीवों की संख्या 5 आती है। देखो अब नीचे की ओर देखना, नीचे की पहली गुणहानि जो है 112, 96, 80 और 64 है, उसके नीचे 32 तक घटे और उसके नीचे 16 तक घटे। ये जो 16 उन्होंने निकाल के दिखाया था, क्या क्या था उसके लिए, नीचे तीन गुणहानियां है तो 128 संख्या कैसे आती है, टोटल 1422 को तीन गुणहानियों से भाग देने पर। अब नीचे और तीन गुणहानियां हैं तो उसको भाग देने के लिए तो और दो बार यानी आधा आधा उसका आधा यानी आठवां भाग हो गया वो, इसलिए 8 से भाग दे, परंतु 8 से भाग नहीं देना हमको, भागार को गुणा करना वहां पर, तो तीन गुणहानियां मल्टीप्लाइड बाय 8 उसका भाग हम टोटल द्रव्य को देंगे तो वहां की संख्या आएगी जो हमें 16 संख्या मिल जाएगी। यही बात वो उसको समझाया जो हमने अपनी भाषा में समझ लिया। अभी अपने पेज पर आना, धवला में आना। अभी अभी हमने विशेषांत पढ़ लिया, 63 पेज पर आए हैं। इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। यहां जीव यो मध्य समझा रहे हैं। पहली प्ररूपणा कौन सी की थी, प्ररूपणा, दूसरी प्रमाण, प्रत्येक योग स्थान में असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव होते हैं, ये दूसरी प्ररूपणा हुई। अब तीसरी प्ररूपणा है श्रेणी, श्रेणी प्ररूपणा ये नंबर 3 है, पेज 61 से शुरू हुआ था ना ये। अब श्रेणी का अर्थ क्या है, प्रति योग स्थान की बात है ना, उसको पंक्ति हम कहे ना, एक योग स्थान में इतने जीव, दूसरे में इतने जीव, तीसरे हमने उसकी पंक्तियां बनाई, तो प्रति पंक्ति कितना रिफरेंस है और जंप मार के दो गुना या दो गुना हानि, उस तरह से वो समझाएंगे। तो देखो वो दो प्रकार के है, अनंतर उपनिधान और परंपरा उपनिधान, यानी अनंतर यानी एक से दूसरे योग स्थान में इमीडिएट नेक्स्ट में क्या होगा, यानी हमने देखा नीचे की ओर और ऊपर की ओर संख्या घटती जाती है, तो थोड़ा घटा ये अनंतर उपनिधा है। और परंपरा उपनिधा जो मूल था 128 वो आधा हुआ, उससे आधा हुआ, उसका आधा हुआ, वो परंपरा, परंपरा ने बीच वाले कुछ स्टेप्स हम बताएंगे, डायरेक्ट जम करके डायरेक्ट हम उसमें जाएंगे, उनमें से अनंतर उपनिधा को कहते हैं वह इस प्रकार है। पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव गुणहानि शलाकाओं का क्या कहते हैं, गुणहानि शलाका जो हमने चार मानी थी, जीव गुणहानि शलाका चार मानी थी क्योंकि चार योग स्थान जाने पर वो जीवों की संख्या आधी हुई थी, वो चार के बदले यथार्थ में जीव गुणानी शला का कितनी है तो पल्ले के असंख्या भाग कुमार, टोटल योग स्थान कितने हैं जगत श्रेणी के असंख्या भाग कुमार। और यहाँ एक जो जीव की गुणहानी प्रति स्थान जीवों की संख्या घटते घटते जहाँ आधी होती है तो कितने योग स्थान चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थान जाने पर जीवों की संख्या आधी होती है, ये उसका अर्थ है। तो कहते हैं पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुणहानी शलाकाओं का त्रैराशिक क्रम से समस्त योग स्थान अध्वान में भाग देने पर एक आयाम गुणहानी आती है। नहीं नहीं ये गुणहानी शला का सॉरी गुणहानी का प्रमाण नहीं है, गुणहानी का प्रमाण तो हमको निकालना है, एक मिनट। टोटल गुणहानियां कितनी है, नीचे तीन है ऊपर पांच है, तो टोटल गुणहानियां कितनी है आठ है, उसको यहाँ नाना गुणहानी कहा। जीव गुणहानी शला का है ना, शला का है गुणहानी, आयाम एक गुणहानी का प्रमाण और गुणहानी शला का यानी नाना गुणहानिया, नंबर ऑफ नाना गुणहानिया, इसको नाना गुणहानी कहेंगे। टोटल नीचे की और ऊपर की मिलकर देखो क्या कहा है? हमने योग स्थान टोटल कितने माने थे अपने उसमें उदाहरण में 32 और नीचे की तीन और ऊपर की पांच मिलकर आठ गुणहानिया होगी, क्यों टोटल नाना गुणहानिया, तो आठ से अगर हम 32 को भागते हैं तो एक गुणहानी का आयाम आ गया चार, ये यहाँ कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ वो आठ के बदले पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो नाना गुणहानियां है 3+5 उसका त्रैराशिक क्रम से समस्त योग स्थान अध्वान में भाग देने पर एक आयाम गुणहानी आती है, यानी आठ नाना गुणहानियों में 32 स्थान है, इस तरह के एक एक स्थान की इतने हैं। तो यहाँ पल्लम के असंख्यात में भाग प्रमाण उसका हमें प्रमाण मिल जाएगा। समझ में आती बात? टोटल कितने योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, उसको किससे भाग देंगे पल्ले के असंख्यात विभाग से, तो क्या मिलेगा गुणहानी आयाम मिलेगा।
तो यह टोटल नंबर ऑफ गुणहानी
हमने 32 माना और उसको हमने 8 से भाग दिया तो 4 मिला। हाँ।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुणहानिया पल्ले के असंख्यात पे,
हाँ नाना गुणहानिया जिसको कहेंगे ऊपर की और नीचे की मिलकर, बीच में तो मोटा है और नीचे भी टेपरिंग ऊपर भी टेपरिंग, तो नीचे आधा 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 कितने बार ऊपर आधा 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 कितने बार, तो सब मिलकर पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण होता है। और हमने ये भी देखा था नीचे से ऊपर थोड़ा ज्यादा है उसका विरलन कर प्रत्येक एक पर जघन्य योग स्थान के जीवों को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी उन्होंने यहाँ बताया ही है उदाहरण देके तो समझने में और आसान होगा, फिर हम ये वाक्य फिर दोबारा पढ़ेंगे, पहले उनकी संदृष्टि पढ़ लेते हैं। जीव गुणहानी शला का आठ यानी यह नाना गुणहानी कहेंगे, नंबर ऑफ नाना गुणहानी नीचे ऊपर की मिलकर, सब योग स्थानों का काल 32, वो भी काल कहने से वो नंबर ऑफ योग स्थान लेना, काल यानी कुछ काल नहीं है, काल से कुछ संबंध नहीं है, यानी नंबर ऑफ योग स्थान। जघन्य योग स्थान के जीव 16 हमने निकाले थे ना अभी, अब क्या करना है 32 को, 32 टोटल योग स्थान है उसको नाना गुणहानिया जो टोटल है उससे भाग दिया तो चार एक गुणहानी का काल जिसको गुणहानी आयाम कहते हैं, यानी चार चार स्थानों में जीवों की संख्या आधी आधी हो जाती है। अब यहाँ जीव प्रक्षेप का प्रमाण है, प्रतिस्थान जीवों का डिफरेंस कितना आता है, कितना आता है, क्योंकि चार बार जाके
आता होता
है, आधा होता है ना। तो देखो यहाँ क्या कहा, एक गुणानी का काल चार आया, तो जीव प्रक्षेप का प्रमाण कितना है, एक 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 करो विरलन और चार 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 चार, 16 आ गए। देखो फिर से, अब ये वाक्य फिर देखो, ये फिर पीछे चलो, पीछे के पेट गुणहानि आयाम कितना आया, चार, उसका विरलन कर, यानी चार को विरलन किया तो एक 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 हो गया। प्रत्येक एक पर जघन्य योग स्थान के जीवों को समखंड करके देने पर, हाँ, तो 16 को चार में विभाजित करो तो हर एक एक के ऊपर चार चार आ जाएंगे। प्रत्येक एक के प्रति जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। जीव प्रक्षेप जिसको हम चय निकालते हैं, यहाँ का चय कितना होगा, चार होगा, यानी अभी नीचे से जघन्य से ऊपर की ओर जाना है तो 16, 20, 24, 28 इस तरह से हो गए। ये हमने वो संदृष्टि देखी थी ना, देखो कर्मकांड की संदृष्टि 250 पेज की, आंखों के सामने रखना। देखो यह नीचे की जो तीसरी गुणहानी है ना, वहाँ जघन्य स्थान में 16 है, एक गुणहानी का आयाम चार है। अब ये क्या करना, 16 को चार में समखंड करके विभाजित करके दे दो, चार 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 आ गए, तो प्रक्षेप का प्रमाण चार है, प्रतिस्थान चार जीवों की वृद्धि होगी, तो 16 से 20 हुए, 20 से 24, 24 से 28, ये प्रक्षेप का प्रमाण है, समझ में। जिसको हम चय वगैरह कहते पन, यहाँ उसको अलग बात है, यहाँ प्रक्षेप कहा है उसको, यानी चार चार से जीव बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात, आगे बढ़े। अब यहाँ जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हुए इस प्रकार है, ये वो मध्य से पहले की नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर योगस्थान के काल से असंख्यात गुणा प्राप्त होता है। पहले हमने क्या देखा था, ये वो मध्य से पहले की नाना गुणहानियां, पहले की नाना गुणहानियां तीन थी, हम वहां पर उसकी संख्या लिखेंगे, तो नीचे लिखा है पहले के नहीं, नीचे के योग मध्यम के नीचे तीन गुणहानियां है, यानी नाना गुणहानियां तीन है, उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 अभी जो हमने निकाली थी, उससे तीन गुणहानियों को गुणा किया, तीन गुणहानियां ने 12 योग स्थान के काल से असंख्यात गुणा प्राप्त होता है।
ये असंख्यात गुणा क्या प्राप्त होता है, जीव का प्रमाण,
प्रमाण। फिर से टोटल योग स्थान काल, जिसको काल उन्होंने कहा वो 32 था, और अभी नीचे के अन्योन्य अभ्यस्त 8 है, तीन गुणहानियां 12 है, वो 12 अतिशयनों के बदले वो 88 जो कुछ लिया था। अब देखो वो जो अभी 96 लेते हैं ना समझाने के लिए, तीन गुणहानियां 12 हुई और उससे वो 8 को गुणा किया, 96 हो गए, और हमारे टोटल योग स्थान कितने, 32, तो उससे असंख्यात गुणा हुआ ना। देखो देखो
8 से 32
हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 32 है ना, टोटल योग स्थान 32 है, हमें टोटल योग स्थान यहाँ लिखे थे जघन्य से उत्कृष्ट तक, उसको 1, 2, 3 नाम देंगे तो 32 हुए। अभी यहाँ हमारा ये वो मध्य है, जो कुछ का जीवों की संख्या की अपेक्षा बात लेना है ना हमको, 128। अब नीचे जो है जीवों की संख्या की अपेक्षा, उसको हमने नीचे के ऊपर की गुणहानियां बताई है, तो यहाँ इसकी संख्या हमने तीन गुणहानी की अपेक्षा बात की, इसके लिए हमने तीन गुणहानियों से भाग दिया तो ये बात आई थी यहाँ पर, यहाँ तो दूसरी ओर से, यहाँ नीचे तीन गुणहानियां हैं, तो उसकी अन्योन्य बस्ती 8 है,
नीचे के 3
हाँ, और उसको 3 गुणानिया 12 से गुणा करो, अभी 96 आया, वो कुछ कम करेंगे तो 88 पॉइंट समथिंग आता है। अब ये 32 से ये संख्या कितने गुना है, ज्यादा है ना, ये 3 गुना हो गई ना, तो 3 गुना यानी असंख्यात गुना हो गए, क्योंकि संख्या ही छोटी छोटी है। हमने 16 भी संख्या क्या है, 16 संख्या भी जगत श्रेणी के असंख्यात असंख्यात जगत श्रेणिया प्रमाण है, तो ये कुछ न कुछ असंख्यात है ना, 3 संख्या भी असंख्यात को बताएंगे ना, 3 गुना यानी असंख्यात गुना, इतना ही लेना है यहाँ पर। फिर से यहाँ जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हुए इस प्रकार है, ये वो मध्य से, फिर से वो 64 पेज पर जहाँ बीच वाली 5 लाइन है ना उदाहरण के ऊपर की, मिला यहाँ धवला में 64 पेज, जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हुए इस प्रकार है, ये वो मध्य से पहले की नहीं नीचे की नाना गुणानी शलाकाओं की, 3 नाना गुणानी शलाकाएं है, उसके अन्योन्य अभिस्त राशि यानी 3 बार 2 को गुणा करना आपस में तो 8 आ गई। उस राशि से 3 गुणानियों को गुणित करने पर 3 गुणानी यानी 4 गुणा 3 12 के बदले उन्हें 88.7 अष्टमोश लिए थे कुछ कम के लिए, गुणित करने पर योग स्थान के काल से, योग स्थान का काल यानी 32 था, काल क्यों कहा, क्योंकि एक एक योग स्थान को स्थिति कहा था, तो टोटल स्थिति यानी काल कितना हुआ, बस इतना कहना हुआ। योग स्थान के काल से असंख्यात गुणा प्राप्त होता है, ये जो 88 समथिंग प्राप्त होता है, फिर उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर, त्रस पर्याप्त राशि हमने 1422 मानी थी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योग स्थान के जीव आते हैं, क्योंकि हमने वही बात की थी ना उसमें, उसका जिस भागा गुणा किया अभी उसका उल्टा देखना है, उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। विष्कम्भ सूची का अर्थ समझता है,
नंबर ऑफ श्रेणी,
हाँ ये विष्कम्भ सूची क्षेत्र की अपेक्षा मान लेते हैं ना, जैसे ये एक सिंगल जगत श्रेणी, दूसरी जगत श्रेणी, तीसरी जगत श्रेणी, ऐसी कितनी लेनी है उसको विष्कम्भ सूची कहते हैं। यहाँ जगत श्रेणी लिखे और यहाँ उसका नंबर लिखेंगे तो ये कितनी है, हाँ इतनी जगत श्रेणियाँ लेनी है, तो उसकी विष्कम्भ सूची भी श्रेणी के असंख्यात वे भाग है, यानी श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण जगत श्रेणियां लेनी है, ये इसका अर्थ होता है, जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय श्रेणी का असंख्यात भाग। उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। उदाहरण देखो, वही उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, अधस्तन नाना गुणानी शलाका 3, वो उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 2 गुना 2 गुना 2 8, 3 गुणानियों का काल 12, त्रस पर्याप्त राशि 1422, 12 को 8 से गुणा किया, 3 गुणानियों को अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा किया तो 96 होते हैं। अब उसमें कुछ कम करना है ना, कुछ कम इसका अर्थात 88.7 अष्टमोश का 1422 में भाग देने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण 16 प्राप्त हुआ, यह हमने पहले ही देखा था कि नीचे के अन्योन्य अभ्यस्त राशि से 3 गुणानियों को गुणा करके उसका भाग 1422 पूरे को दे दो तो नीचे की अंतिम जो है जघन्य स्थान वहां के जीवों के प्रमाण आता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, क्योंकि योग स्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्तभूत जो जगत श्रेणी का भागहार है वह जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग पाया जाता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं। योगस्थान संबंधी काल का लाना है ने उस पर्टिकुलर योगस्थान में जीवों की संख्या लानी है। इन्होंने कथन क्या किया समाधान में, योगस्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्त भूत जो जगत श्रेणी का भागार है, ये जगत श्रेणी को किस संख्या से भाग देना है कहते, वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। इसका अर्थ क्या हुआ, जगत श्रेणी का भागार जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग प्रमाण है। यहाँ क्या लिखा देखो, फिर से योगस्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्त भूत जो जगत श्रेणी का भागहार है वो जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग पाया जाता है। वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है, क्योंकि सब योगस्थानों को जघन्य योगस्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके उसमें एक स्पर्धक की, इसका अर्थ देखेंगे हम, श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से सब योगस्थानों को गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती है। इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि योगस्थानों का काल लाने के लिए जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। हमें बाकी कुछ नहीं समझेगा इसमें से एक लेना है, ये जघन्य स्पर्धक क्या होता है, उसके लिए योगस्थान क्या होता है इसकी चर्चा हम प्रारंभ की थी और उसमें हमने शब्द देखे थे वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि आदि शब्द उसमें आते हैं। उसका अर्थ देखते हैं, जीव के प्रदेशों का प्रमाण तो फिक्स है, कितना है लोक, एक लोक जितना है, एक लोक प्रमाण। अभी उसमें कुछ प्रदेशों में मिनिमम योग होगा, अभी जो मिनिमम योग वाले जो प्रदेश है वो हम एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, ये अलग अलग जीव के प्रदेश है। प्रदेश कितने इसमें, तो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण इसमें प्रदेश हो गए, पूरे कितने लोक प्रमाण है और उसमें लोक में से जगत प्रतर गुणा असंख्यात इतने यहाँ प्रदेश लिए। अब क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर योग है जो जघन्य है, उसके ऊपर की वर्गणा दूसरी बनाएंगे, इसको वर्गणा कहा, जीव की प्रदेशों को यहाँ वर्गणा कहा, जिनमें समान समान अविभाग प्रतिच्छेद है, अविभाग प्रतिच्छेद भी मिनिमम कितना है तो असंख्यात लोक है, अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोक है एक एक प्रदेश में, और ऐसे जघन्य जिसमें है उसके एक कतार में लिखे वो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। सेकंड लाइन में हमने ऐसे प्रदेश लिखे कि जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसके ऊपर एक और एक, इस तरह से तो ऐसे जाते हैं कि वो कितने होते, वर्गणाएं कितनी होती, एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणा, फिर दूसरा स्पर्धक उसकी वर्गणा, फिर तीसरा स्पर्धक, इस तरह जैसे हमने कर्मों में देखते हैं, कर्मों में जैसे देखते हैं वैसे यहाँ पर, परंतु यहाँ इसका अविभाग प्रतिच्छेद अनंतों में नहीं होगा असंख्यातों में, बस इतनी बात है, ये डिफरेंस इसमें, और वहाँ वर्गणाएं भी अनंत होती है एक एक स्पर्धक में, यहाँ असंख्यात होती है, तो एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा। अब ये त्रैराशिक देखो, श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाएं होती एक एक स्पर्धक में। देखो अब यहाँ नीचे का समाधान पढ़ते, 64 पेज पर नीचे का समाधान, सब योगस्थानों को जघन्य योगस्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके उसमें एक स्पर्धक की जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से सब योगस्थानों को गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती हैं। पहले में मेरे क्या करेंगे, अभी ऐसा एक स्पर्धक हुआ, एक एक स्थान में ऐसे एक एक स्थान में ऐसे असंख्यात स्पर्धक हो गए, तो एक स्थान में असंख्यात स्पर्धक तो टोटल जो हमने 32 माने थे ना, वैसे टोटल जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र टोटल योग स्थानों में स्पर्धक कितने, तो टोटल स्पर्धक आए सभी योग स्थानों के। अब त्रैराशिक क्या, एक स्पर्धक में इतनी असंख्यात वर्गणा, तो सभी योग स्थानों के सभी स्पर्धकों में कितनी वर्गणाएं, इसको कहेंगे सभी वर्गणाओं का प्रमाण आया। वो भी कितना आता है, वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही आता है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात वेरिएशन से। यहाँ तक बात ख्याल में आई?
टोटल योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात के
बाद, हाँ,
एक का
योग स्थान में सब जगह श्रेणी का असंख्यात भाग, ऐसा ही कथन आएगा। केवल नाना गुणानीय पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होते, बाकी एक एक योग स्थान में गुणानिया भी उतनी, एक एक गुणानी में स्पर्धक भी उतने, एक एक स्पर्धक में वर्गणाएं भी उतनी उतनी भी ना दिख है उसका पर्यायिक नहीं से उसमें डिफरेंस है, परंतु कथन ऐसा ही होगा। यहाँ तक बात ख्याल में आई? एक एक वर्गणा में तो वर्ग असंख्य जगत प्रत्येक
वर्गणा में
वर्ग कितने,
वर्ग कितने
असंख्यात जगत प्रत्येक परमाणु परदेशों की संख्या, प्रदेशों की संख्या, आप वो योग स्थानों में जीवों की संख्या लगा रहे, हम एक योग स्थान की अपेक्षा बात कर रहे, एक योग स्थान काहे से बना है, पूरा मिलकर एक योग स्थान कहने में आता है। देखो योग स्थान किसको कहना, जरा इसमें चाहे ये विषय ऐसा है ना, ये लास्ट में आने वाला है, पर ये कर्मकांड में आसान है। 59 आगे भी 441 पेज पर आने वाला है, चूलिका में ये सब फिर आने वाला है। 59 पेज नहीं, वो वर्ग वर्गणा की बात यहाँ नहीं समझाइए, वो समझना चाहिए, क्योंकि अभी वर्गणाओं को लाना है ना, इसलिए कर्मकांड में आसान होगा, जरा देख लेते हैं। विशेषार्थ है क्या वहां पर आगे, फिर विशेषार्थ है इसमें कोई कर्मकांड का नंबर नहीं दिया है। यहाँ योगस्थान किसको कहना वो हम देख रहे हैं, कल जो हमने पढ़ा था ना, देखो वर्ग वर्गणा और किसको क्या कहना, हाँ पेज नंबर है 227, एक्चुअली उसके भी पहले शुरुआत होते हैं, पेज नंबर 224 पर, कर्मकांड पेज 224, क्योंकि समझे बिना केवल वर्गणा वर्गणा करने से कुछ नहीं समझ में आना। पेज नंबर 224 कर्मकांड, योग स्थानों के अवयव कहते, 223 नंबर की टीका, सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है, ये तो हमने बहुत बार अभी अभी देखा, उनमें एक एक स्थान के प्रति अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि इतने भेद नियम से होते हैं, उसको पूरा एक योग स्थान में क्या क्या होती है, तो अनेक वर्गणाएं होती है, वो वर्गणाओं में भी स्पर्धा गुणानी वगैरह भेद पाड़ते हैं, वो सब मिलकर एक योग स्थान हुआ। यानी एट एक सिंगल समय में एक जीव के योग इस प्रकार से पाया जाता है। यानी सभी असंख्यात प्रदेशों में समान योग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो प्रदेशों की ऐसी रचना दिखाएंगे, अब उसके बाद यहाँ बताते हैं 225 पेज पर। एक स्थान में एक योग स्थान में गुणहानी शला का पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। हमने देखा था ना, यहाँ गुणहानी शला का किसको कहना? अब यहाँ वो जीवों की संख्या को भूल जाओ, पहले मिले वर्ग वर्गणा से यानी उल्टी शुरुआत की है। अब यहाँ एक जीव है, उसके लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। जिन जिन प्रदेशों में मिनिमम योग है उनको हम उन प्रदेशों को एक लाइन में लिखेंगे, उसको कहेंगे पहली वर्गणा, फिर दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। यानी ये हम वर्गणा और इस तरह से, ये पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, इस तरह से बहुत सारी हो गई। फिर योग, योग जहाँ जाकर दो गुना होता है वहाँ से लेकर और वर्गणा है, ये दूसरा स्पर्धक, फिर तीसरा स्पर्धक, इस तरह से यहाँ जितनी संख्या है प्रदेशों की, वो प्रदेश जहाँ आधे होते हैं उसको गुणहानि कहेंगे। तो एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक है, ये आधे हुए, ऐसे आधे प्रदेश उससे आधे होते होते टोटल वो जीव के सारे असंख्यात प्रदेश यहाँ तक आ गए। तो कितनी बार आधे आधे हुए उसको कहेंगे नाना गुणहानि। यहाँ तक बात क्या है? वो अभी यहाँ जीवों की संख्या 128 भूल जाओ, यहाँ दूसरे उदाहरण चल रहे। यहाँ एक जीव के एट ए टाइम, एक सिंगल समय में उसके योग की रचना कैसी होती है। इन सभी वर्गणाओं में मिलकर जीव के प्रदेश तो लोक प्रमाण असंख्यात है, उससे कम ज्यादा नहीं होने वाले। अभी उनमें है जो समान योग वाले, जघन्य योग वाले प्रदेश हम सिंगल लाइन में लिखेंगे, एक प्रदेश को एक वर्ग कहेंगे। जिनमें जिनमें समान अविभाग है योग का, उन सभी को हम ये जघन्य वर्गणा कहेंगे, ये दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा। तो ऐसे एक एक अविभाग से प्रतिच्छेद से बढ़ते हैं। मूल में अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं उसमें? इसमें एक एक सिंगल प्रदेश में अविभाग प्रतिच्छेद मिनिमम भी कितने हैं? तो असंख्यात लोक है। अब वो असंख्यात लोक में से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता चला जाएगा, परंतु प्रदेशों की संख्या घटती चली जाएगी। अब इसमें बीच में अंतर छोड़कर जहां अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना होता है, यानी दो असंख्यात लोक, वहां से लेकर हम फिर यहां से वर्गणा नाम देंगे उसके, दूसरे स्पर्धक की वर्गणा, पहली, दूसरी, तीसरी, वो भी असंख्यात होगी, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, इस तरह से। अभी प्रति वर्गणा प्रदेश घट रहे हैं, प्रदेश घटकर जहां आधे हो गए वहां तक एक गुणहानि हो जाएगी, और ऐसी अनेक गुणहानियां हैं। तो पर पूरा जीव एक है, तो एक उसका एक योग स्थान है, तो पूरे योग स्थान में क्या है? नाना गुणहानियां हैं। एक एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक है, एक एक स्पर्धक में अनेक वर्गणा है, और एक एक वर्गणा में अनेक वर्ग है। अभी उल्टा नाना गुणहानियां टोटल कितनी है? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। अब एक एक गुणहानि में स्पर्धक कितने हैं? तो श्रेणी के असंख्यात विभाग में। एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है? वो भी श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। और एक एक वर्गणा में वर्ग कितने हैं? तो असंख्यात जगत प्रत्यय। और एक एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद कितने? तो असंख्यात लोक। एक यूनिट उसको मिनिमम योग वृद्धि जिसको कहा, उसको एक ही अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। ये योग में जो जघन्य वृद्धि जितनी होती है उसको यहाँ एक यूनिट कह दिया। योग स्थान में वृद्धि नहीं कह रहे, वर्गणा वर्गणा के प्रति वृद्धि की बात है। स्पर्धक स्पर्धक में बहुत सारे अंतर है, क्योंकि वहां दो गुना होने के लिए बीच में बहुत सारा अंतर है। फिर से अभी यहाँ 225 पेज पर आना। ये विषय मुझे पता है कि बहुत गहरा है और समझने में बहुत कठिन है। इसको समझे बिना केवल वो दसवीं पुस्तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो एक एक स्थान में गुणा, एक योग स्थान में गुणहानि शलाका पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। गुणहानि शलाका इन्हें प्रदेशों की संख्या आधी 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 कितने बार हुई, अभी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा प्रदेश यानी योग बढ़ेगा ऊपर की ओर और प्रदेशों की संख्या अल्प होगी। यह नाना गुणहानि का प्रमाण है। एक गुणहानि में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक है। समझ में आती है इतनी बात। अभी आगे एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या 52 मात्रा आलाप यानी कहने के लिए कथन वैसा ही होगा। कितना जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग और एक एक वर्गणा में वर्ग असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। अब नीचे का पैराग्राफ 226 का एक एक वर्ग में वर्ग यानी एक जीव प्रदेश को इतने एक वर्ग कहा। असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है। ये योगों की शक्ति है, शक्ति में नापते हैं हम, उसके अंशों में नापते हैं तो उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। वहां अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण प्रदेशों की जघन्य वृद्धि रूप जानना, उसके एक एक अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहना, प्रदेशों की जघन्य वृद्धि रूप का अर्थ क्या है। यहाँ कोई प्रदेशों की वृद्धि नहीं होती है। देखो पेज नंबर 227 निकालो। नीचे से चौथी लाइन, जीवों के प्रदेशों में कर्म ग्रहण करने की शक्ति योग में जघन्य वृद्धि अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। यानी हमने नहीं कुछ प्रदेशों में इतनी शक्ति है, कुछ प्रदेशों में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, वो जघन्य जितनी वृद्धि हो सकती है उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद का। यहाँ योग का अधिकार है इसलिए योग रूप शक्ति के विभाग रहित अंश का ग्रहण किया गया, उसी को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। देखो उसका ऊपर का पैराग्राफ यहाँ ही पढ़ लेते, पहले पेज नंबर 227 का ही अविभाग प्रतिच्छेद। अभी हमने देखा विभाग प्रतिच्छेद योग की शक्ति को कहते हैं। वर्ग, एक एक प्रदेश को वर्ग कहेंगे। वर्गणा, जिनमें जिनमें समान जो अविभाग प्रतिच्छेद युक्त वर्गों का समूह उसको वर्गणा कहेंगे। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। अनेक स्पर्धकों को गुणहानि कहेंगे, जहाँ जो पहली वर्गणा में जीवों के प्रदेश नंबर ऑफ प्रदेश थे उससे आधे होते हैं वो, हाँ उसको गुणहानि कहेंगे। ये योग स्थान के इतने भेद कहे। तो वहां एक जीव के एक समय में पाया जाए ऐसा गुणहानियों का समूह उसको स्थान कहेंगे, यानी वो योग स्थान पूरा। स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं, जहां आधी संख्या होती उसको। अनुक्रम से वृद्धि हानि रूप जो वर्गणाए उनके समूह को स्पर्धक कहते हैं। वृद्धि हानि क्यों कहा, जो हमने ऊपर की ओर या नीचे की ओर देखेंगे तो वृद्धि ऊपर से नीचे, हाँ वृद्धि कहेंगे, नीचे से ऊपर हानि कहेंगे। यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों की ऊपर वृद्धि होती चली जाएगी और प्रदेशों की हानि होगी। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे थे 225 पर, इसलिए बीच में 227 पर चले गए थे। फिर से पढ़ती हूँ 226 की टीका। एक एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी एक एक जीव के प्रदेश में, वहां अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण प्रदेशों की जघन्य वृद्धि रूप जानना, इसका अर्थ अभी हमने देख ला। जिसका दूसरा भाग न हो सके ऐसा शक्ति का जो अंश उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यहाँ उल्टे क्रम से कहा है इसलिए अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग है, वर्गों का समूह वर्गणा है, वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है, स्पर्धकों का समूह गुणहानि है और गुणहानियों का समूह स्थान है। इस प्रकार सीधे क्रम से जानना, ये योग स्थान में इतना सब इंक्लूडेड है। अब वर्गणा किसको कहा, समान अविभाग वाले प्रदेशों को हम एक लाइन में लिखेंगे उसको वर्गणा कहा। तो स्पर्धक में इतनी असंख्यात वर्गना होती है, ऐसे असंख्यात स्पर्धकों की एक गुणहानि होती है, ऐसे असंख्यात गुणहानियों का एक पूरा योग स्थान होता है। यानी योग स्थान में, एक योग स्थान में इतने असंख्यात वर्गना है, तो सारे जो योग स्थानों में मिलकर कितने होंगे, वो भी उससे असंख्यात गुना हो जाए। ये यहाँ कहना चाहते हैं। अब अपना पुस्तक निकालना है।
जो हम लोग ऋषि के अनुभव की अपेक्षा सभी अनुभव के स्पर्धक पाए जाते हैं, ऐसे वन पर्टिकुलर टाइम में जगत से उत्कृष्ट
प्रत्येक जीव में ले लो,
प्रति जीव जगत से उत्कृष्ट योग तक सभी प्रदेशों पाए जाएंगे।
अब घोटाला कर रहे हैं, योग स्थान की बात चल रही है यहाँ पर। योग स्थान अलग अलग है, आप कर्मों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बराबर। तो अनुभाग की अपेक्षा जो जघन्य अनुभाग वाले जो एक इंद्रियों के योग्य अनुभाग है, तो एक इंद्रियों में पंचेंद्रिय के योग्य उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। समझ में आती है बात? ये योग स्थान ही जुदे जुदे है ना, सबका जघन्य सेम होगा,
सबका जघन्य सेम होगा,
जघन्य से काउंट करेंगे ना, जघन्य सेम होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं लेना उसमें भी, कैसे आपको समझाऊं? त्रस में ही लेना है ये सब। हमने देखो अभी यहाँ जो कोई योग स्थान है, जीव के प्रदेश तो उतने के उतने हैं और उसमें पर्टिकुलर योग है, तो उस योग इतने प्रदेशों में बटेगा, और ऊपर जहाँ उत्कृष्ट योग है वो भी उन्हीं प्रदेशों में उतना बटेगा, तो उनकी जो जघन्य वर्गना होगी वो अलग होगी। समझ में आती है बात? देखो एक योग स्थान से पूरे टोटल योग स्थान का अविभाग प्रतिच्छेद निकालो, एक एक वर्गना एक एक स्पर्धक अलग नहीं निकालना। जब हम कहेंगे एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान थोड़ा ज्यादा है, जो हमने 1, 2, 3, 4, 32 नंबर दिए थे ना अलग अलग, तो पहला योग स्थान है, क्योंकि प्रदेश तो उतने के उतने जीव के, उन्हीं प्रदेशों के अलग से रचना करेंगे हम। तो टोटल एक योग स्थान का टोटल अविभाग प्रतिच्छेद कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ इसमें इतना अविभाग प्रतिच्छेद है, एक एक वर्ग में असंख्यात लोग, तो असंख्यात जगत प्रतल में कितना होगा, फिर दूसरी वर्गना में कितना, उसका टोटल अविभाग प्रतिच्छेद, तीसरी वर्गना में, और यहाँ प्रदेश घटते चले जा रहे हैं, हर एक वर्गना का अलग अलग हिसाब निकालो, तो सबकी टोटल जितनी होगी वो पूरे योग स्थान का अविभाग प्रतिच्छेद। दूसरे योग स्थान में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, वो थोड़ा कितना है, ये पूरा पहला जो जघन्य स्पर्धक है उसको सुचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करा, इतना अविभाग प्रतिच्छेद उसमें मिला दो, वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर उस दूसरे स्थान की रचना अलग से बताएंगे, क्योंकि तो टोटल योग है वो किन प्रदेशों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके वहां अलग से बात होगी। अब यहाँ हम 65 नंबर के पेज पर आते, 65। केवल सूचकुण के असंख्यात भाग मात्र अधिक नहीं। मैंने अभी क्या कहा था
आपको,
जघन्य स्पर्धक को इतना गुणा करके उतने ज्यादा होता है, ऐसा कहा। पेज नंबर 257 निकालो। देखो हम क्या करेंगे, हम 32 मानेंगे स्थान, तो जघन्य स्थान का टोटल अविभाग प्रतिच्छेद निकालेंगे, एक एक स्थान में वो सब वर्गणा स्पर्धा गुणानी सब कुछ मिलकर जितना टोटल अविभाग प्रतिच्छेद है उसको हम एक योग स्थान कहेंगे, और 32वां नंबर का जो कुछ अलग होगा, तो जो 32वें नंबर में जो कुछ टोटल योग होगा माइनस जघन्य का योग, तो हमारे डिफरेंस मिल गया, तो उसको हम 32 में कितना प्रति योग में कितना कितना बढ़ता है उसको हमको पता चलेगा। इतना तो बात ख्याल में आई। अब यही बात यहाँ 257 पेज पर पढ़ रहे हैं, 254 की टीका। आदि तो जघन्य स्थान, ये ऊपर बताए थे ना भेद कितने होते हैं, और अंत उत्कृष्ट स्थान, इनको शुद्ध करें। अंत के उत्कृष्ट स्थान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उनमें से जघन्य स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद घटाने पर जो प्रमाण आता है उसको वृद्धि का भाग देने से, वृद्धि का भाग यानी कितने बार वृद्धि हुई, तो 32 अगर स्थान लेते 31 बार वृद्धि हुई, तो उसका यहाँ एक एक स्थान में सुच्चंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है। मैंने केवल सुच्चंगुल का असंख्यात भाग नहीं कहा था, जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुच्चंगुल का असंख्यात भाग, इतना जितना होगा इनका जो योग होगा टोटल उतना ऐड करो तो दूसरा स्थान होगा, उसमें उतना ही ऐड करो तो तीसरा आता है, उसमें उतना ही ऐड करो तो चौथा आता है। क्योंकि एक एक वर्गणा में ही असंख्य, एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण है तो पूरी वर्गणा में भी असंख्यात लोक ही कहेंगे, वो उसका कथन असंख्यात गुना बढ़ेगा, परंतु सामान्य टर्मिनोलॉजी असंख्यात लोक ही हो जाएगा, पर उसमें ऐड कितना करना तो दूसरा स्थान आएगा। तो जघन्य स्पर्धक के जो टोटल जो है अविभाग प्रतिच्छेद उसको सुच्चंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करने पर जितना होगा उसमें ऐड करना। अब वो दूसरे स्थान में किस रूप से उसकी निषेक रचना फिर दोबारा अलग से हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश उतने ही रहने पर अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा है तो वहां की वर्गणाएं वगैरह सब अलग पद्धति से उसकी रचना हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। पेज नंबर 65 धवला, एक 5 मिनट है अभी और। यहाँ सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हैं, वह इस प्रकार है। एक कम योग स्थान के काल को, जो अभी हमने एक कम योग स्थान का काल है ना 32-1, समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके आधा कर, समस्त योग स्थान का काल है 32, फिर उसका आधा करके, पहले 31 × 32/2, फिर अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके। प्रक्षेप स्पर्धक शलाका का अर्थ होता है प्रक्षेप यानी उसमें एडिशन करते जाना, हमने अभी देखा ना सुच्चंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक उसमें ऐड करते जाओ, अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके उसमें योग स्थान के काल से गुणित जघन्य योग स्थान की जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योग स्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं होती हैं। इसका विशेष अर्थ है क्या? नहीं नहीं, ये आगे आगे हेमंत राय उन्होंने गुणहानी से शुरुआत की है उसकी। क्योंकि आज बहुत ज्यादा सैचुरेट हुआ है ना, दो है परंतु वो गुणहानि के काल से शुरुआत हो जाइए, वो अनंत रूप निधाने की बात है। यानी जीव प्रक्षेप प्रमाण की प्ररूपणा वहां नहीं आई थी, वो जीव प्रक्षेप हमने क्या देखा था, एक एक योग स्थान में कितने कितने जीव बढ़ते, तो हमने देखा ना 4-4 से बढ़ते थे वगैरह, वो बात अलग थी। नीचे की गुणानी में 4-4 प्रक्षेप था, फिर ऊपर वो 8-8 होगा, 16-16 होगा, वो बात अलग थी। उसी में से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी अभी तो नहीं होगा क्योंकि विषय फिर से वहां से शुरू करेंगे। कर्मकांड 224 कुछ लिखा है। पहला पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, हाँ तभी तभी समझ में आ जाए। ये पूरे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना ऐसे नहीं, पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ का विषय वहाँ का विषय, इसलिए मैं, क्योंकि शोभा के पास भी वो कर्मकांड नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में इसी का आधार लेके चल रही हूँ। चलो यहीं रुकेंगे हम, कल यहीं से शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 65 वहाँ रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।